आज है 25 जनवरी दिन सोमवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। भारत और फ्रांस में रफाल लड़ाकू विमान की खरीद को लेकर बनी सहमति।
अगर ये 36 एयरक्राफ्ट फ्रांस जो है वो तुरंत सप्लाई कर पाता है, टैक्टिकल दृष्टिकोण से भारत के वायुसेना की एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा हो जाएगा।
तमिलनाडु में 3 कॉलेज जाने वाली छात्रों की आत्महत्या के बाद 2 की गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी।
आज हमारा ये डेलीगेशन माननीय राष्ट्रपति जी से मिला कि किस तरह से बीजेपी की गवर्नमेंट भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने भारत में 6 परमाणु रिएक्टर लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने नई दिल्ली में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा, सैन्य सहयोग से लेकर चरमपंथ से निपटने और परमाणु ऊर्जा जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते चंद्र बोस भाजपा में शामिल हो गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उन्होंने सोमवार को हावड़ा में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अमित शाह ने हावड़ा में सोमवार को एक रैली को भी संबोधित किया और राज्य की तृणमूल कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। शरणार्थियों की बढ़ती मुश्किलों की वजह से ग्रीस को शेंगेन क्षेत्र से हटाए जाने की आशंकाओं के बीच यूरोपीय संघ के मंत्रियों ने बैठक की। एम्स्टरडैम में बैठक के दौरान ऑस्ट्रिया की गृह मंत्री जोहाना मिक लेशनर ने कहा कि ग्रीस के खिलाफ ऐसा कोई भी कदम तभी उठाया जाएगा अगर वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा पर कोई गारंटी नहीं दे पाता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये साफ है कि अगर ग्रीस तुर्की के साथ लगी अपनी सीमा की रक्षा नहीं कर सकता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस यूरोपीय संघ की बाहरी सीमा को केंद्रीय यूरोप की तरफ बढ़ा दिया जाएगा। ये वक्त की ज़रूरत है कि ग्रीस जितनी जल्दी हो सके अपने संसाधनों को मजबूत बनाए। ऑस्ट्रिया की गृहमंत्री जोहाना मिक लेशनर के शब्द। पिछले साल यूरोप में करीब 10 लाख प्रवासी पहुंचे थे। इनमें से तुर्की से ग्रीस तक पहुंचते करीब 700 लोग मारे गए थे। पिछले सप्ताह फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुअल वाल्स ने चेतावनी दी थी कि यूरोप के प्रवासी संकट से यूरोपियन यूनियन पर दबाव बढ़ गया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने दावा किया है कि उनका देश कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट को दफन कर देगा। हाल ही में इस्लामिक स्टेट के स्थानीय धड़ों के साथ अफगान सैनिकों और तालिबान लड़ाकों की मुठभेड़ के बाद गनी का ये बयान सामने आया है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच में शिरकत करने पहुंचे अफगान राष्ट्रपति ने बीबीसी से कहा कि आईएस के लिए अफगानिस्तान में समर्थन नहीं है और इसके अत्याचारों के कारण जनता इनसे कट चुकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि पठानकोट एयरबेस पर हुए चरमपंथी हमले से संबंध में भारत ने कुछ नए सबूत दिए हैं और उनका देश इनका सत्यापन कर रहा है ताकि साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा सके। दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने के बाद लौटते हुए लंदन में नवाज शरीफ ने समाचार एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। इसी महीने की शुरुआत में पठानकोट एयरबेस पर हुए चरमपंथी हमले में 7 सुरक्षाकर्मी और 6 चरमपंथियों की मौत हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के लगभग सभी प्रांतों ने देश को गणराज्य बनाने की वकालत की है। इन राज्यों के नेताओं ने ऑस्ट्रेलिया को गणराज्य का दर्जा देने संबंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भारत और फ्रांस के बीच हुए समझौते से। भारत और फ्रांस ने आज रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद पर सहमति जताते हुए अंतर सरकारी सहमति पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पिछले साल अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सौदे की घोषणा की थी लेकिन कीमत पर सहमति ना बन पाने की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया था। भारत के दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने आज कहा कि ये सौदा अब फैसले की कगार पर है और कीमत से जुड़े मुद्दे कुछ ही दिनों में सुलझा लिए जाएंगे। इस अहम घोषणा के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो पर सफर भी किया। पूरी जानकारी के साथ दिव्या आर्य।
लेडीज एंड जेंटलमैन, आई आल्सो हैव अ 14th
भारत और फ्रांस के बीच हुए समझौतों की घोषणा खत्म ही हो गई थी कि आखिर में बताया गया कि दोनों देशों के बीच 36 रफाल जेट खरीदने पर इंटर गवर्नमेंटल सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता कर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने बताया,
मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये समझौता भारत और फ्रांस के बीच विश्वास का प्रतीक है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही फाइटर जेट हैं जिनका इस्तेमाल सीरिया और इराक में आईएसआईएस से लड़ने के लिए किया जा रहा है। हमारा आज का समझौता एक निर्णायक कदम है और अगले कुछ ही दिनों में हम कीमत से जुड़ी आखिरी बातचीत भी तय कर लेंगे।
राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के शब्द। इसके साथ ही राष्ट्रपति ओलांद ने बताया कि साल 2008 में परमाणु ऊर्जा के शांतिप्रिय इस्तेमाल के लिए किए गए समझौते के मुताबिक जैतापुर में 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। इस पर आखिरी बातचीत इस साल पूरी कर अगले साल प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा, सैन्य सहयोग, चरमपंथ से निपटने और परमाणु ऊर्जा के अलावा भी कई मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
रेलवे इंजन से सैटेलाइट के निर्माण तक, सीमा सुरक्षा से लेकर के अंतरिक्ष की सीमाओं तक, साझी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से स्मार्ट सिटी तक, सूर्य ऊर्जा से लेकर के न्यूक्लियर पावर तक, नमस्ते इंडिया से लेकर के बोंजूर फ्रांस तक आज लिए गए निर्णय इन सभी कार्यक्षेत्रों में हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को विकसित करेंगे।
यात्रियों से अनुरोध है कि वो मेट्रो ट्रेन के दरवाजे बंद होते समय अवरोध।
वार्ता के फौरन बाद दोनों नेताओं ने अचानक अपनी निजी गाड़ियां छोड़ दिल्ली मेट्रो का रुख किया। फौरन ट्विटर पर प्रधानमंत्री कार्यालय के अकाउंट से मेट्रो में राष्ट्रपति ओलांद के साथ उनके सफर की तस्वीरें भी ट्वीट की गयी।
हेलीकॉप्टर से भी आ सकते थे लेकिन हम दोनों ने मिलकर तय किया कि अच्छा होगा हम मेट्रो से चले जाए और आज आपके बीच हमें मेट्रो से आने का अवसर मिला। मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूँ।
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ओलांद ने मेट्रो से दिल्ली से गुड़गांव का ये सफर तय किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस की इमारत की नींव रखने और तब तक एक अंतरिम सचिवालय का उद्घाटन करने के लिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की घोषणा पिछले साल पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ओलांद ने की थी। इसके तहत सौर ऊर्जा पर शोध और उसके इस्तेमाल की नई तकनीकों पर काम किया जाएगा। मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति भारत की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि होंगे और ये पहली बार होगा कि किसी अन्य देश के कंटिंजेंट परेड में हिस्सा लेंगे। फ्रांस के दो कंटिंजेंट जिनमें एक म्यूजिकल है गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सैन्य बलों की तरह सलामी देंगे। दिव्या आर्य, BBC, दिल्ली। तो भारत और फ्रांस ने रफाल लड़ाकू विमान को लेकर किया समझौता। मैंने अब से थोड़ी देर पहले रक्षा मामलों के जानकार और सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज़ के डायरेक्टर कॉमोडोर उदय भास्कर से बात की और इस सहमति की अहमियत पर पूछा।
सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये जो रफाल लड़ाकू विमान का जो डील है ये दोनों देशों के लिए अहम है। ये बात सही है कि भारत के वायुसेना के लिए एक फाइटर एयरक्राफ्ट का जो खोज है ये कई सालों से चल रहा था, पर साथ साथ ये भी सच है कि फ्रांस के लिए एक भारत जैसे देश जो 126 एयरक्राफ्ट खरीद सकता है ये भी अपने आप अहम है फ्रांस के लिए। तो जहां तक ये जो सौदा है मुझे लगता है कि इसके अंदर कमर्शियल और तकनीकी जो मुद्दे हैं उनके ऊपर सहमति अभी पूरी बनी नहीं है और लगता है उसमें कुछ समय लग सकता है।
फ्रांस का ये कहना कि वो मेक इन इंडिया का भाग बनना चाहता है, उसने इच्छा जाहिर की है, तो इसे कितनी एक सकारात्मक पहल माना जा सकता है?
ये बहुत ही मैं कहूंगा कि महत्वपूर्ण है कि फ्रांस ने भारत को समर्थन देने के लिए एक प्रकार का पॉलिटिकल कमिटमेंट दिया है मेक इन इंडिया को बढ़ोतरी देने के लिए। पर यहीं पे काफी जटिलता है क्योंकि अभी तक भारत और फ्रांस में इस प्रकार का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जहां भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ये काफी एक कमर्शियल मुद्दा है, तकनीकी मुद्दा है और दोनों देशों के बीच में जो खास सेंसिटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी का जो शेयरिंग है ये अभी तक फ्रांस और भारत ने इस प्रकार का कार्रवाई नहीं किया है। क्योंकि जितना भी भारत ने अभी तक प्राप्त किया है मेजर जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं, लड़ाकू विमान हो या जहाज हो, आम तौर पे रूस के साथ जो भारत का अनुभव रहा है वो एक प्रकार से असेंबली वाली बात थी, यानी कि रूस से जितना भी आर्ट सप्लाईज वगैरह यहाँ आते थे उनको यहाँ असेंबल किया जाता था और भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता जो है वो बिल्कुल यानी कि बहुत ही कम है। तो अभी जो फ्रांस एक प्रकार से भारत को ये भागीदारी का बातचीत हो रहा है लड़ाकू विमान एवं हेलीकॉप्टर्स के लिए, इससे मैं कहूंगा कि अगर मेक इन इंडिया जिस दिशा या जो आशा मोदी साहब ने बार बार कहा है अगर वो सफल होता है तो भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है खास मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए उसको एक बहुत ही मैं कहूंगा कि खास ट्रैक्शन या समर्थन मिलेगा। तो इसलिए ये जो राफेल डील है इसमें मेरे ख्याल से दोनों देश जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मेक इन इंडिया अभी तक भारत के तरफ से मैं कहूंगा कि जो रूल्स रेगुलेशंस और जो फ्रेमवर्क है वो एक प्रकार का वर्क इन प्रोग्रेस है और फ्रांस के तरफ से भी उन्होंने इस प्रकार का सौदा या डील शायद किसी और देश के साथ नहीं किया है जहाँ सेल के अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है।
रफाल लड़ाकू विमान मिलने से भारत को कितनी मजबूती मिलेगी?
जहाँ तक भारत का जो इस वक्त वायुसेना है ये बात सही है कि एक काफी सख्त जरूरत है जहाँ तक फाइटर एयरक्राफ्ट की बात है क्योंकि भारत का जो वायुसेना के अंदर जो कमी है अभी जो कॉम्बैट स्क्वाड्रन है ये करीब 35 के आसपास माना जाता है जबकि ये करीब 44-45 के आसपास होना चाहिए कॉम्बैट स्क्वाड्रन। तो इस वक्त अगर ये 36 एयरक्राफ्ट फ्रांस जो है वो तुरंत सप्लाई कर पाता है तो इमीडिएटली मैं कहूंगा कि टैक्टिकल दृष्टिकोण से भारत के वायुसेना की एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा हो जाएगा, ये अहम है। पर भारत ने जो रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट किया था वायुसेना ने ये 126 विमान है तो अर्थात ये 90 और जहाजों की जरूरत है और देखना है कि वो कहां तक भारत के अंदर बन सकता है। और जबकि पूरे क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन के बीच में एक बहुत गहरी तरीके से मिलिट्री कोऑपरेशन है और उसमें लड़ाकू विमान एक खास पहलू है तो भारत के लिए मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म के लिए ये राफेल डील जो है ये बहुत जरूरी है और लॉन्ग टर्म में भारत के अंदर अगर एविएशन इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस प्रकार का अगर टेक्निकल कोऑपरेशन मिल जाता है तो धीरे धीरे भारत के अंदर मिलिट्री और कमर्शियल एयरक्राफ्ट का एक इंडस्ट्री का भी शुरुआत हो सकता है।
ये थे सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के डायरेक्टर कॉमोडोर उदय भास्कर।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
तमिलनाडु में पुलिस ने कॉलेज जाने वाली 3 छात्राओं की आत्महत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 3 छात्राओं ने शनिवार को कथित तौर पर अधिक फीस की मांग पर नाराजगी जाहिर की थी और फिर कुएं में छलांग मारकर अपनी जान ले ली थी। मैंने इस बारे में और जानकारी के लिए बेंगलुरु फोन कर इमरान कुरैशी से बात की।
जी, मामला ये है कि 3 छात्रों ने परसों आत्महत्या कर ली और उनके सुसाइड नोट में लिख दिया था कि यहाँ की सहूलतें इतनी खराब हैं कॉलेज में और लगातार कॉलेज के मैनेजमेंट हमारे पास से पैसा ले रही है और रसीद भी नहीं दे रही है। तो इसके बाद पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, मतलब मैनेजमेंट के जो करस्पॉन्डेंट और वाइस चेयरमैन है उनके बेटे की गिरफ्तारी की है और उसके अलावा उनके प्रिंसिपल मतलब कलानिधि नाम के हैं तो उन दोनों की गिरफ्तारी की है। और आज दोपहर को चेन्नई के ताम्बरम कोर्ट में वाइस चेयरमैन की पत्नी है और जो इनको कहा जाता है करस्पॉन्डेंट, कॉलेज करस्पॉन्डेंट बोला जाता है, वासुकी सुब्रमण्यन ने, उन्होंने आज कोर्ट में आत्मसमर्पण कर लिया है।
क्या इन छात्रों ने पहले कभी और भी आवाज उठाई थी कि जितनी फीस ली जा रही है उतनी सहूलियत नहीं दी जा रही है?
कॉलेज के पूरे छात्रों ने ये सवाल उठाया था पिछले सितंबर और अक्टूबर के महीने में, वहाँ जब भी कुछ थोड़े छात्रों ने आत्महत्या की थी मगर उनको फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया था और उनको बच गए थे बच्चे। मगर अभी जो ये 3 लड़कियां जो आत्महत्या की है उनकी चिट्ठी में स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि हम इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि सरकार कुछ इस पे एक्शन ले। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आज आई है, वो स्पष्ट कर दी है कि इन 3 छात्रों की मौत कुएं में डूबने से हुई है, मतलब ये कि इनका खून नहीं हुआ है। छात्रों का इल्जाम ये भी था कि 6 लाख रुपये फीस देने के बावजूद छात्रों को कोई किसी तरीके की सहूलत नहीं मिलती थी, मतलब खाना भी नहीं मिलता था ठीक तरह से, वहाँ पढ़ाई के लिए कोई रेगुलर प्रोफेसर नहीं आते थे, लेक्चरर्स नहीं होते थे कॉलेज में वगैरह। तो इसके अलावा आज की मौत के बाद उनके माता पिता ने उनकी शव को लेने से इनकार कर दिया था मगर प्रशासन के अधिकारियों ने उनको पोस्टमार्टम करवा दी और आज दो छात्रों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, मगर तीसरे की अभी भी हाईकोर्ट में मामला दर्ज है, तो आज शाम को या शायद कल तक कुछ जानकारी मिलेगी।
ये थे बेंगलुरु से इमरान कुरेशी, आप सुन रहे हैं दिन भर सुशीला सिंह के साथ। और अब रुक करते हैं अरुणाचल प्रदेश का। 60 विधानसभा सीटों वाले राज्य में राजनीतिक अस्थिरता नई बात नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश के बाद राज्य में मौजूदा राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक कदम बताया है। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देगी। ये मामला पिछले साल दिसंबर में शुरू हुआ था, जब कांग्रेस के 21 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। अरुणाचल का ये पूरा मामला क्या है, बता रहे हैं जुबैर अहमद।
अरुणाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है, लेकिन वहाँ उत्पन्न राजनीतिक संकट बड़ा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। अब से कुछ घंटे पहले कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिला, जिसकी सूचना पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्र मंत्री गुलाम नबी आजाद ने दी।
कल 26 जनवरी और एक दिन पहले बीजेपी की गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति राज के लिए कैबिनेट में निर्णय लिया कि वहाँ राष्ट्रपति राज होगा। इसीलिए आज हमारा ये डेलीगेशन माननीय राष्ट्रपति जी से मिला कि किस तरह से बीजेपी की गवर्नमेंट भारत के संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। ये तो न तो पार्लियामेंट पे विश्वास रखती हैं और न ही भारत के संविधान और भारत की जुडिशरी पर विश्वास रखती हैं। लिहाजा ऐसी सरकार के खिलाफ हम पूरा जंग लड़ेंगे, पार्लियामेंट में, कोर्ट में और पब्लिक में।
इससे पहले पार्टी ने राष्ट्रपति शासन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। पार्टी नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अदालत को एक याचिका पेश की गई है। उनका दावा था कि अरुणाचल प्रदेश में संकट के पीछे एक साजिश है।
ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसके पीछे एक साजिश थी, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, जिसमें आरएसएस भी शामिल है और जिसमें सारे जो इनके बीजेपी के प्रेसिडेंट है अमित शाह, वो भी शामिल है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सारे इल्जाम को गलत बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी संवैधानिक दृष्टि से सरकार में होने का अधिकार खो चुकी है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु चतुर्वेदी कहते हैं,
अरुणाचल विधानसभा का पिछला सत्र 21 जुलाई को समाप्त हुआ और 21 जनवरी को वह 6 महीने समाप्त हो जाते हैं। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि वो निरंतर पिछले 6 महीनों से सत्र बुलाने से क्यों भाग रहे थे? तो संवैधानिक दृष्टि से 21 जनवरी के बाद वह संवैधानिक दृष्टि से सरकार में होने का अधिकार खो देते हैं। संवैधानिक स्थिति यह है, राजनैतिक स्थिति यह है कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। नैतिक स्थिति यह है कि वो सब कुछ करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राष्ट्रपति तक जाएंगे, पर सत्र नहीं बुलाएंगे, अपने विधानमंडल दल की बैठक नहीं बुलाएंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला संवैधानिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील सूरत सिंह की राय में राष्ट्रपति शासन के फैसले से बचा जा सकता था।
कई राज्यों में जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक होती है तो कितने ही राज्यों में होता है कि जो है वो इलेक्शन बहुत देर से कराते हैं, तो ये तो वो चल जाता है। सत्र बुलाना चाहिए, सत्र ना बुलाना अपने आप में कानूनी रूप से अच्छा नहीं है, लेकिन ये अपने आप में इतना स्ट्रांग रीजन नहीं है जिसके आधार पर वह राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जाए, क्योंकि सत्र ना बुलाना जो भारत के डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उनका उल्लंघन है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाना उनका उससे ज्यादा बड़ा उल्लंघन है।
अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट 16 दिसंबर को उस समय शुरू हुआ जब सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के 21 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के उस समय केवल 11 सदस्य थे। इन सभी विधायकों ने विधानसभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाकर स्पीकर और मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया। राज्य की कांग्रेस पार्टी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करने के लिए एक संवैधानिक बेंच गठित किया, लेकिन इसका फैसला आने से पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने आज हावड़ा में रैली की और राज्य में तृणमूल सरकार पर जमकर हमला बोला। पार्टी का अध्यक्ष दूसरी बार बनने के बाद ये उनकी पहली रैली थी। पश्चिम बंगाल में इसी साल चुनाव होने हैं, वहीं इस रैली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते चंद्र बोस बीजेपी में शामिल हो गए। मैंने कोलकाता फोन कर प्रभाकर मणि तिवारी से अमित शाह की रैली पर और जानकारी मांगी।
ये एक रणनीतिक योजना थी भाजपा की कि यहाँ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं 2 महीने बाद ही, तो पहली रैली के लिए यहाँ चुना उन्होंने और खूब आक्रामक तेवर में नजर आए। पहली बार अब तक उनको कम से कम यहाँ इस तरह के आक्रामक मूड में नहीं देखा गया था। ये पहली बार उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला और हर मुद्दे पे उसकी खिंचाई की, कहा ममता बनर्जी ने पतन की राह पर ढकेल दिया है, देशद्रोहियों को शरण दे रही है और तमाम बम धमाकों में तृणमूल का हाथ है, चीट फंड घोटाले में तृणमूल का हाथ है। एक बार उन्होंने कहा हमें मौका दीजिए, सारा बंद कर। ये रैली बेसिकली इन्होंने इससे भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत की यहाँ, और चुनाव 2 महीने बाद होने हैं और पिछली बार जब आए थे तो इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि 2019 की तैयारी में जुटी है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव और सत्ता से तृणमूल को हटाने की अपील के साथ वो मंच पर लगातार वही बातें करते रहे कि उनको हटाइए, हमें मौका दीजिए। तो इससे अहमियत बढ़ जाती है खासकर कि भाजपा, पहले उसने कभी इतने आक्रामक तेवर भाजपा के यहाँ नहीं नजर आए थे। बीच में चीट फंड वाला मामला भी काफी ठंडा पड़ गया था और राजनाथ सिंह भी पिछले हफ्ते आए तो एक शब्द नहीं कहा था चीट फंड के बारे में, लेकिन ये पहली बार है कि पार्टी अध्यक्ष ने इस स्तर से हमला बोला है सरकार पर, तो इससे साफ है कि भाजपा आक्रामक तेवरों में है और तृणमूल के खिलाफ घमासान की तैयारी में है।
भाजपा आक्रामक तेवर में नजर आती है और आज ही उसी मंच पर जो है, जो नेताजी के पड़पोते हैं चंद्रबोस, वो पार्टी में शामिल हो गए। हाल ही में हमने देखा कि 2 दिन पहले ही नेताजी से संबंधित फाइलें सार्वजनिक हुई थी। हालांकि जब बात हुई थी चंद्रबोस जी से तो उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे, अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं?
हाँ, ये तो अभी उन्होंने बताया नहीं है। आज सुबह अमित शाह जब यहाँ पहुंचे तो कोल इंडिया के गेस्ट हाउस में उन्होंने मुलाकात की चंद्रबोस ने, करीब 20 मिनट तक। उसके बाद बाहर निकले तो हमने पूछा कि आपने अचानक क्यों रुख बदला है, तो उनका कहना था कि मैं बाद में बताऊंगा ये सब चीजें, पहले मैं एक बार पार्टी औपचारिक रूप से ज्वाइन कर लूं। रैली बाद में होनी थी और वो रैली में ज्वाइन किया, तो उन्होंने तब कहा कि मैं देखता हूं बाद में बताऊंगा। हालांकि रैली में जब उनको माइक थमाया गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस वंदे मातरम भारत माता की जय। वहां भी पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं बाद में समय आने पर बताऊंगा। यही है कि कांग्रेस नेताजी के आदर्शों को धो पोंछ कर खत्म करने का प्रयास कर रही है, इतना ही कहा उन्होंने।
चुनाव को लेकर अब 2 ही महीने रह गए हैं और चंद्रबोस जो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, क्या ये एक रणनीतिक जो है फैसला है? क्या इससे किसी तरह की मजबूती मिल सकती है बीजेपी को पश्चिम बंगाल में?
हाँ, ये तो एक बीजेपी का राजनीतिक फायदा तो जबरदस्त है। इसे यहाँ राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि ये उसकी स्वरूप की चाल हो सकती है, क्योंकि चंद्रबोस अकेले ऐसे व्यक्ति थे नेताजी के परिजनों में जो सबसे ज्यादा मुखर थे गोपनीय फाइलों के मुद्दे पर। हाल के महीनों में कई बार नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी उन्होंने, और उनका मानना है कि नेताजी 1945 के विमान हादसे में नहीं मरे थे। और दिलचस्प है कि अब भाजपा उनको लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने की बात कह रही है। एक भाजपा नेता से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि वो हमारे उम्मीदवार होंगे, लेकिन फिलहाल विधानसभा चुनाव में पार्टी के चुनाव अभियान का प्रमुख चेहरा बनेंगे चंद्रबोस। ये पार्टी ने रणनीतिक तैयारी कर ली है इसकी, और वे ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार करेंगे। और दिलचस्प है कि ममता भी उन्हीं की लाइन पे है, वे भी मानती है कि नेताजी उस हादसे में नहीं मरे थे। तो ये बीजेपी का अपर हैंड इस मामले में तो माना जा रहा है यहाँ।
ये थे कोलकाता से प्रभाकर मणि तिवारी, और अब आपकी चिट्ठियां।
आपकी राय, स्वीकार कीजिए। नमस्कार, राजेश जोशी का, और मेरे साथ हैं,
मैं हूँ स्वाति बख्शी।
स्वाति बख्शी भी मेरे साथ हैं, और उनके पास बहुत सारी चिट्ठियां हैं, पोस्टकार्ड हैं, ईमेल हैं। अचानक एक शेर मेरे दिमाग में आ गया है आपकी ये चिट्ठियां देख करके।
इरशाद राजेश जी।
ये गालिब साहब ने कहा है कि चंद तस्वीरें बुता और चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला। अब हमारे लिए तो हमारे जो श्रोता है वही हमारे हसीन हैं, वही हमारे महबूब हैं, सब कुछ वही हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि पीले पीले पोस्टकार्ड आपके हाथ में नुमाया हैं, बताएं क्या कहते हैं हमारे श्रोता।
देखिए, कुछ शिकायतें हैं, और वो भी शिकायतें बहुत ज़्यादा तल्ख नहीं हैं आपकी बार में देख रही हूँ। अच्छा। और कुछ तारीफें तो है ही। सबसे पहले मैं ये पत्र ले रही हूँ, पोस्टकार्ड लिखा है अरबाब खान ने जैसलमेर राजस्थान से। कहते हैं कि आप सभी को नमस्कार, लेकिन आपने राजस्थान को बिल्कुल छोड़ दिया है। 2 महीने हो गए हैं, कोई खबर राजस्थान से नहीं आई है। राजस्थान को समाचारों में ज़रूर शामिल करें।
भाई, ये शिकायत तो खान साहब की बहुत ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि आभा शर्मा ने अभी जयपुर के बारे में एक पैकेज रेडियो का आपको सुनाया, किस तरह से अपने बच्चों को जो दूध पिलाती हैं महिलाएँ, उनके लिए सुविधा वहाँ हो रही है। लिटरेचर फेस्टिवल जो होता है उस पर रिपोर्ट आई। भाई थोड़ा सा गौर से सुनिए।
और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पोस्टकार्ड हम कम शामिल करते हैं, ईमेल बहुत ज्यादा
लीजिए। मेरे सामने चार या पांच पोस्टकार्ड तो आपके सामने और भी उधर पड़े हुए हैं।
आज मैंने खास तौर से कोशिश की कि दोनों को कहीं ना कहीं बैलेंस किया जाए। जी राजेश जोशी जी, आपको नमस्कार। भेजा है बद्री प्रसाद वर्मा अनजान ने।
जी बद्री प्रसाद जी, आपको भी नमस्कार।
और कहते हैं कि आपका स्वर आपकी राय में लाजवाब है, आप क्या पत्रों का खूब जवाब देते हैं, सुनकर मजा आ जाता है।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसा लिखते हैं बस मुझे जवाब देने की उससे प्रेरणा मिलती है, ये समझ लीजिए।
लेकिन एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, क्या मैं बीबीसी का पुराना श्रोता नहीं हूँ, सिर्फ जंग बहादुरी है?
दोबारा पढ़िए।
कह रहे हैं कि क्या मैं बीबीसी का पुराना श्रोता नहीं हूँ, सिर्फ जंग बहादुरी है?
अरे बापरे, इन्होंने कहा है कि जंग बहादुर गोल पहाड़ी जमशेदपुर से हमें चिट्ठी लिखते हैं। लेकिन साहब बद्री प्रसाद वर्मा जी, आज जंग बहादुर जी की कोई चिट्ठी हमने नहीं ली है, इसलिए आप और दूसरे जितने भी श्रोता हैं उनको ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि हर श्रोता को शामिल किया जाए, उसकी चिट्ठी शामिल की जाए इस कार्यक्रम में। लेकिन कई बार उन श्रोताओं की चिट्ठी शामिल हमको करनी पड़ती है जो कार्यक्रम के बारे में लिखते हैं, हमारे प्रोग्राम के बारे में अपनी राय, अपनी पसंद आया नहीं आया ये जाहिर करते हैं। अगर आप बहुत सारी दीन दुनिया की और बातें कहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चिट्ठियों को शामिल कर पाना। उम्मीद है वर्मा साहब आप समझेंगे हमारी बात।
राजेश जी, एक और चिट्ठी राजेश कुमार पांडे की आई है, देवीपुर तांडा अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से।
जी क्या लिखते हैं पांडे साहब?
राजेश जी, क्या हमसे पूछे कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की कोई गुंजाइश है या नहीं, ये जरूर बताइएगा। और कहते हैं कि इस कार्यक्रम को पेश करने वाली ममता गुप्ता और अचला शर्मा की काफी याद आती है।
याद आती है, अरे वाह बहुत अच्छा है। अचला शर्मा और ममता गुप्ता, जाहिर सी बात है वो तो खुश हैं और लंदन में हैं, कभी मौका होगा तो उनसे भी बात करवाएंगे। रही बात हमसे पूछिए कार्यक्रम शुरू करने की, जब भी ऐसा मुमकिन होगा हम जरूर पेश करेंगे, लेकिन अभी कोई वादा करने का कोई अर्थ नहीं है।
ऋषिकेश गुप्ता का पत्र आया है गाजीपुर वाराणसी मंडल उत्तर प्रदेश से। इन्होंने तारीफ की है जूही चावला के साथ जो बातचीत थी उसकी।
किसने की थी बातचीत?
मैंने बातचीत
जी, तो अपना नाम लेने में शर्माइए, झिझकिए मत।
जी इन्होंने लिखा है कि खनकती हंसी और चुलबुली आंख वाली जूही चावला के साथ स्वाति बख्शी की भेंटवार्ता अच्छी लगी। स्वाति जी ने उनके सिर्फ अभिनय जीवन को ही छुआ, लेकिन अंत में जो सवाल आशा पारेख के पुरस्कार प्राप्ति की लालसा के माध्यम से कलाकार के सम्मान को उजागर करने में सफल रही, इसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया है।
तो आप ही को जवाब देना पड़ेगा।
जी ऋषिकेश जी, तारीफ करने के लिए बहुत शुक्रिया। और जहां तक आपका सवाल ये है कि सिर्फ अभिनय जीवन को ही छुआ, बात यह है कि हम आपको बहुत ही सीमित समय में पूरी बातचीत सुनवाना चाहते हैं, तो उस वजह से हमें एडिट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उस बातचीत का एक हिस्सा ही आप तक हम पहुंचा पाते हैं राजेश जी।
और इतना ये लोग जो कलाकार हैं, एक्टर हैं, इनका व्यक्तित्व इतना बड़ा होता है कि 11 मिनट की बातचीत में संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है।
अब ईमेल्स मैं जल्दी से लेती हूँ, इंडिया बोल पर सारे ईमेल्स हैं लगभग। युगराज सिंह है और लिखते हैं कि जो लास्ट इंडिया बोल कार्यक्रम था वो बहुत ही दिलचस्प लगा इन्हें, खासतौर से कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से सुशीला सिंह को टेक ओवर किया वो इन्हें काफी अच्छा लगा।
ये अच्छा लगा इनको। अच्छा एक शिकायत है मुझे लगता है जो आपका अगला ईमेल है, शब्बीर खन्ना साहब रियाद से हमारे बहुत पुराने श्रोता है, उनको तो साहब मेरी बात बहुत ही नागवार गुजरी है।
लिखा है कि आपने सुशीला जी को एक कोने में बिठा दिया।
अरे साहब मेरी जुर्रत, सुशीला जी हमारी बहुत ही काबिल ब्रॉडकास्टर हैं और मेरी हिम्मत नहीं है कि उनको कोने में या किसी को भी कोने में बैठाएं। उस दिन विषय ऐसा था जिसमें मेरी भी दिलचस्पी है और थोड़ी जानकारी, इसलिए मैंने सोचा कि बातचीत की जाए और उस रॉ में हम बह गए, लेकिन अगली बार से आपकी शिकायत का ध्यान रखेंगे।
लेकिन मोहम्मद जीशान नैयर जो अक्सर हमें ईमेल लिखते हैं, कहते हैं कि वो इंडिया बोल सुनते नहीं आजकल क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उन्होंने ये सुना क्योंकि मुद्दा दलित का था और इन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि कार्यक्रम साफ सुन नहीं पा रहे हैं पिछले कुछ।
जीशान वो हमारे श्रोता हैं जो लगभग रोजाना हमको ईमेल लिखते हैं और रोजाना शिकायत करते हैं कि आप मेरा खत शामिल नहीं करते। तो जीशान भाई आपका खत शामिल हो गया है, आप इंडिया बोल नहीं सुनते क्योंकि आपको पसंद नहीं है, ये तो हमारे लिए थोड़ी सी अटपटी बात है, दुख की बात है। आप सुनते रहिए, जैसे आपको इस बार शनिवार का कार्यक्रम पसंद आया आगे के कार्यक्रम भी आपको पसंद आएंगे ऐसी उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि अब ईमेल और नहीं ले पाएंगे क्योंकि वक्त हो चला है।
नमस्कार।
और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने भारत में 6 परमाणु रिएक्टर लगाने का ऐलान किया है। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते चंद्र बोस भाजपा में शामिल हो गए। शरणार्थियों की बढ़ती मुश्किलों की वजह से ग्रीस को शेंगेन क्षेत्र से हटाए जाने की आशंकाओं के बीच यूरोपीय संघ के मंत्रियों ने आज बैठक की। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने दावा किया है कि उनका देश कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट को दफन कर देगा। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।